مولانا فضل الرحمان کو. ان ہم تو ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اور پھر جس وقت یہ بات ہوئی میں نہیں کہتی, پھر جناب پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ترامیم کیا ہے, مسلم لیگ نون کو نہیں پتا ترامیم کیا ہے, آپ کی پی ٹی آئی کو نہیں پتا ترامیم کیا ہے, مولانا فضل الرحمان کو نہیں پتا ترامیم کیا ہے. کہاں سے آئی تھی وہ ترامیم ہو کے, ہاؤ کم کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیزائن ہوئی تھی ان لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا. اگر ان فیکٹس کی بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی فیور کرتے ہیں, بھاڑ میں جاؤ.
بادل میں آپ سے یہ کہتا ہوں, فیصلے غلط عدالت نے کب نہیں کیے. ذوالفقار علی بھٹو کا آج بھی وہ کہتے ہیں ہم نے غلط فیصلہ کیا.
سر ٹروتھ اینڈ ریکنسائل کریں. ٹروتھ اگر آج کینیڈا میں یہ بات ہو رہی ہے, اور اگر آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو پھر جیسے ابھی زرداری صاحب کہہ کے گئے ہیں پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو پڑھ میں جاؤ. I don't talk about one party, I talk about the wrong decisions.
ہاں تو عدالتیں بھی کبھی فیصلے غلط کر دیتی ہیں, وہ ریکٹیفیکیشن اب کر رہی ہیں جا کے کہ بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی.
بھٹو تو مر گیا بےچارا, لگ گیا نا پاسے,
لیکن فیصلہ تو غلط ہوا تھا نا, اب مان رہے ہیں نا.
ٹھیک,
فیصلے غلط کب نہیں ہوئے. اب دیکھیں پینٹا باد بھی غلط فیصلے کر لیتا ہے,
صحیح
ہے, لیکن اس پہ کبھی اتنی تنقید تو دی ہوئی کسی چینل پہ. ہر جگہ غلط فیصلے ہوتے ہیں.
صحیح,
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کو پچھلی دفعہ جو جتایا تھا غلط فیصلہ ہو گیا ہم
سے. کہتے ہیں بالکل صحیح. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں امریکہ میں اکثر لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جنرل یہ پہن کے یونیفارم ہے, یونیفارم پہن کے آتے ہیں. جب کہتے ہیں آئی ایس آئی کا تو میں کہتی ہوں اٹس ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن, ناٹ بائی مائی پیپل, اٹ از بائی دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, اٹ از ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوشن. میرے تو کل پرسوں فرائیڈے کے پروگرام میں بھی میں نے یہ لفظ کہا تھا. دشمنی برائے دشمنی کی بات اور ہے, مگر جہاں آپ کا غلط فیصلہ ہے آپ کا غلط فیصلہ ہے. آپ نے عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, آپ وفاقی آئینی عدالت کیوں, ون یونٹ ہے ہی نہیں تو صوبے چیلنج ہی نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے کہیں کہ ہاں جی میں اس کے خلاف ہوں تو میں جی پی ٹی آئی والی ہوں.
باجوے کو ایکسٹینشن دینا غلط فیصلہ تھا, پی ٹی آئی
باجوے کو ایکسٹینشن دینا غلط فیصلہ تھا, ایبسولوٹ غلط فیصلہ تھا, مگر باجوہ صاحب کو پوزیشن, نو باجوہ صاحب کو پوزیشن دلوائی تھی جنرل امجد کی وجہ سے, ان کے سسر کی وجہ سے.
وہی نا, ہر دور میں غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں.
Exactly.
بالکل ہوتے رہے ہیں.
تھینک یو,
ہمیں مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ غلطیاں جو ہے نا ریکٹیفائی ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں ہونی,
مگر
چاہیے.
اس میں آ کے مطلب جب وہ کہتے ہیں نا کوئی زور نہیں تو یا تو کسی عورت کے کردار کے اوپر آ جائیں گے یا میرا نہ تو میری کوئی پارٹی ہے. یس ہی از این آنےسٹ مین.
میری بھی کوئی پارٹی نہیں.
آپ میں اتنا ضرور کہتی ہوں عمران خان واز ایبسولیٹلی رانگ ان ہز پیپل چوائس, اپنی کیبنٹس کی, اپنے لوگوں کی. پی آئی اے کو ڈبونے والا کون تھا؟ سرور تھا. کہاں سے آیا تھا؟ نون لیگ میں سے آیا تھا, کاف لیگ میں سے آیا تھا, سارے لوٹے تھے.
یورپ کے روٹ کی پابندیاں لگی, کس کے دور میں لگی؟
میں کہتی ہوں پائلٹ گالیاں دیتے ہیں, بدوائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں.
تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم.
بہت شکریہ.
میں ریگولر سنتا ہوں یہ پروگرام, اور ذرا فوج کی پروپیگنڈا نہ کیا کریں.
نہیں میں فوج میں میری, آپ نے تنویر سلطان کا پروگرام نہیں سنا تو میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ ہمارے پالیٹیشینس, میرا کرامت بھائی کی نالج مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے, مگر میرا سٹینس کچھ اور ہے. لیاقت علی خان کے بارے میں بھی میرا سٹینس کچھ اور ہے. جتنا میں نے
بڑا نالج ہے, غوری صاحب کا ایکسپیرینس بھی بڑا ہے, نالج بھی بڑا ہے, اور میں ہمیشہ ان کو سنتا ہوں, اور ان کی پوئٹری بڑی اچھی ہوتی ہے.
آج فوج کو برا کہنے والے کہتے ہیں تو بھٹو صاحب تھے جنہوں نے سی این سی کو بٹھایا تھا وہاں پہ. اگر آپ ہم یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے؟
نہیں,
نہیں, کیونکہ وی آر ڈیوائڈیڈ سو ویری بیڈ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ٹاپ آف ٹاور کا وقت ہو جاتا ہے, ٹاپ آف ٹاور کی طرف چلتے ہیں. یو نو واٹ, زندگی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایلیگیشن لگانا بڑا آسان ہے. میں آپ کو, مجھے نہ کوئی ڈر ہے کسی سے نہ کچھ اور, میرے لیے صرف پاکستان عظیم تر ہے. عمران خان ایماندار ہے, میں کہوں گی وہ ایماندار ہے. ہز چوائس آف دا پیپل واز رانگ, ایبسولیوٹ رانگ. جب وہ آئے تھے ہی واز, ہی ڈیڈ ناٹ کم ود دا ہوم ورک, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब भी जिंदगी के जो फर्स्ट टेन्योर था उसमें शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और हम भी बेवकूफ बकरियों की तरह साथ पीछे चल पड़ते हैं, वो जी गायें बेच देनी है, भैंसे बेच देनी है, यूनिवर्सिटियां बना देनी है। यस ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आप उसका घर देखें, आपको घर अगर उसका नजर आता है, ही हैज डोनेटेड दैट होम टू शौकत खानम। आपका कोई मरा नहीं है, किसी को कैंसर नहीं हुआ, इसलिए आपको नहीं पता व्हाट इज शौकत खानम, हाउ मेनी पीपल गॉट ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर।
और कराची में उसके कैंसर हॉस्पिटल को
स्टॉप कर दिया,
मुकम्मल
नहीं होने दिया।
ये
कम ऑन,
ये है वो।
प्लीज टॉप ऑफ द आवर विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इन्फॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डिया दे विच ई आवाज ऑफिशियल एप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
10 दिन हो गए तेन स्नेहा लाई नू पर तू इग्नोर ही कर रहे हैं। फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनी। आपका आप परिवार का ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दी सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज़ की वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज से है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी घटा दितियां हन। इस दौरान पियर पॉलियर एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट कीती। हुन सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव ही कैनेडा दा माहौल ठीक कर सकते ने। ब्रॉट यू बाय पियर पॉलियर एंड कैनेडाज कंजरवेटिव।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
साड़ी कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जाम है। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक क्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक क्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241 6477-0241।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैक्लॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार मॉर्गेज ब्रोकर, कॉल टुडे 6479235659, 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, लाइसेंस नंबर 13654।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें 770 एम डायल पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज और हमें देख रहे हैं ई आवाज टीवी पर भी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब आपका और हमारा साथ आज भी 7:30 बजे तक रहेगा और इस वक्त जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार। और आपको मालूम है कि मॉर्गेज के मामलात जिस तरीके से अब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बेहतरी की तरफ, आप यूं ले सकते हैं, हमने एक बहुत साल जो है इस तरीके का देखा कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई 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 होते रहे, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट लग रहे हैं और इस वक्त जो है वो काफी ईज भी किए जा रहे हैं रूल्स भी। तो ये तमाम अपडेटेड मालूमात देने के लिए हमारे साथ की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और इनका नंबर है 6479235659। आइए उनके प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मॉर्गेज की दुनिया में नया क्या हो रहा है। हेलो जैस्मीन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक। पहले तो थोड़ा सा अपने और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए जैस्मीन जी।
हाँ जी जरूर आमिर जी, सो एज हम बेसिकली आई हैव मेंशनड कपल टाइम्स एंड मैंने अपने पूरे लिसनर्स को बताया है, हमारी सर्विसेज आर द सेम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मॉर्गेजेस आप जो काफी टाइम से सुन रहे हैं, बट नाउ वी हैव ओपन अप आवर ओन ब्रोकरेज वेयर वी ऑल्सो वेलकम एनीबडी हु इज लुकिंग टू ज्वाइन और अ करियर चेंज एंड वॉन्ट टू बी अ मॉर्गेज एजेंट or already an existing agent and looking for a good established brokerage where they can get a lot of in-house support and training. Definitely, please remember one name, Keystone Financial Experts. We are with Dominion Lending Centers. So, hamari apni franchise hai, hamari do locations hai to help you serve our clients. Or agar aapko agar Brandon close hai ya Mississauga close hai, you can come into either of our location as a mortgage agent or a client, and we make sure that we cater all our clients from both locations as per your convenience. So that's the one thing. Agar basically agar koi bhi if you are looking to join a good brokerage, aap mere sath contact kar sakte hain. We will be more than happy to talk to you and tell you how we can help you in progress your career and how we can help you excel in your mortgage agent career and how this could become beneficial for you. और अगर आप हम क्लाइंट हैं, हमें आप काफी टाइम से सुन रहे हैं, आपको पता है कि वो हमारी ब्रोकरेज है, ऑफकोर्स हमारे एजेंट्स हैं एंड वी आर अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे एट योर सर्विस फ्रॉम 9 AM टू 7 PM एंड ऑन वीकेंड्स बाय अपॉइंटमेंट ओनली। सो इफ यू आर लुकिंग टू गेट एनी ऑफ योर फाइनेंसिंग डन, वेदर आपने प्रॉपर्टी बाय करी है और आप रीफाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, इट्स सर्टेनली अ वेरी वेरी गुड टाइम, सर्टेनली अ वेरी गुड टाइम फॉर हमारे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या हमारे न्यू बायर्स है जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी आप पहली बार आप लेना चाह रहे हैं एंड यू आर न्यू टू दिस मार्केट एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड यू वांट टू फील कंफर्टेबल विद योर ट्रांजैक्शन एंड यू वांट समवन टू सिट डाउन विद यू एंड एक्सप्लेन द होल प्रोसेस, डोंट हेजिटेट, पिक अप द फोन, गिव मी अ कॉल, आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ यू, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पूरा जो है एक मॉर्गेज का प्रोसेस है आपको प्रॉपरली समझाऊं, आपको पूरा हम आपको शुरू से लेके एंड तक जब तक अंटिल यू डोंट हैव द कीज इन योर हैंड वी आर ऑलवेज हियर विद एवरी स्टेप ऑफ द वे टू मेक श्योर योर एंटायर ट्रांजैक्शन योर एंटायर परचेज इज वेरी स्मूथ सो दिस वे यू फील कम्फर्टेबल. हम आपको पूरी तरह से पूरे प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, आपको हर स्टेप एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है. सो अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं या आप रीफाइनेंस करवाना चाह रहे हैं या आप का रिन्यूअल आ रहा है एंड यू वॉन्ट टू डिस्कस की वट यू शुड बी डूइंग ऑन योर रिन्यूअल एंड यू वॉन्ट मोर मनी आउट फॉर डेट कंसोलिडेशन या लाइन्स ऑफ क्रेडिट please feel free to give me a call. We have our clients servicing residential mortgages, commercial mortgages, private mortgages or construction loans. You can give me a call at 647-923-5659. Hamara office Brampton mein hai on the major intersection of Queen Street and Gorway Drive. It is at 9280 Gorway Drive, Unit C102, Brampton. Please give me a call for all your mortgage needs at 647-923-5659.
जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना जैस्मीन परमार का नंबर 647-923-5659. किसी भी किस्म के अगर आपको मॉर्गेज से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार हमेशा आपके लिए मौजूद हैं. जस्ट शी जस्ट वन कॉल अवे. अगेन इनका नंबर 647-923-5659 इनका नंबर है. बहुत शुक्रिया जैस्मीन जी आपका.
बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू आवर लिसनर्स फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट.
थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ये थी हमारे साथ जैस्मीन परमार जी और की फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो दो लोकेशन से ही ऑपरेट करती हैं. इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी ब्रोकरेज, आपको मालूम है कि 21 सितंबर को इनकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, तो इनके दो लोकेशन एक ब्रैम्पटन में और एक मिसिसागा में. आप गूगल भी कर सकते हैं की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट. चलिए जनाब एक और जो है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं और इसके बाद थोड़ी देर में हम आपको ले जाएंगे स्टूडियो नंबर 2 पर जहां आरफा मुजफ्फर साहिबा जो है वो बात करेंगी शाबिर साकिर साहब से. और क्या बात करेंगे आपको पता है, हालात जो आईनी तरमीम है वो गर्मा गर्मी इस वक्त हुई है और कहा जा रहा है कि एक और कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट लगा दी जाएगी. उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो टर्न हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो एक बड़ी अदालत जिसको आईनी अदालत है वो उनके ऊपर आ जाएगी. तो यानी वो जो आईनी अदालत बन जाएगी वो कर्ता धरता होंगे, उनके पास राइट ज्यादा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इस तरह के कुछ मसाइल हैं जनाब. आई होप कि आप लोग इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं और आप लोगों की मालूमात इस बारे में मुझसे ज्यादा ही है तकरीबन. लेकिन एक क्या बातें हुई वो मुकम्मल बात अब से बस कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे. चलें जनाब कुछ पैगाम दे देते हैं और ओपन माइक कैफे नासिर शाह साहब आते हैं, कौन नहीं जानता उनको, और वो कहते हैं कि अगर आपने लजीज मजेदार खाना खाना है तो एक बार जरूर ओपन माइक कैफे पहुंचिए. और इनका एड्रेस है 1310 डंडाज स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 3 और इनका नंबर है 416-526-6800 इनका नंबर है ओपन माइक कैफे. और वहां वो कहते हैं कि भाई लाहौरी नाश्ता, यानी अब तो खैर सैटरडे संडे गुजर गया, अपकमिंग सैटरडे संडे आप वहां नाश्ता सुबह कर सकते हैं. उनकी गोट कढ़ाई जो है वो सुना है कि बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार जरूर ओपन माइक कैफे तशरीफ लेकर जाइए. इसके अलावा जनाब अगर आप और आपके फैमिली मेंबर्स उमरा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको एक नाम देते हैं अल हबीब ट्रैवल्स का. और सबसे पहले इनका नंबर नोट कर लें 905-554-7786 इनका नंबर है. और इनके मुख्तलिफ पैकेज जो हैं अक्टूबर नवंबर जनवरी एंड फरवरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप वाकई उमरा प्लान कर रहे हैं तो जनाब आपको मैं अक्टूबर मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट यही, यानी इस महीने आने वाले महीने में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके 9 अक्टूबर से लेकर आप 20 अक्टूबर तक ट्रैवल करते हैं तो जो क्वाड यानी चार लोगों का जो पैकेज है वो 3185 यानी 3185 और अगर आप तीन लोग हैं ट्रिपल तो उसका पैकेज है 3335 और अगर आप दो लोग हैं तो $3,660 आपको पड़ेगा। और इसके अलावा कहते हैं कि आपकी ग्राउंड पूरी ऑन ग्राउंड सर्विस आपको मिलेगी, जियारत अगर आपने मक्का और मदीना में करना है वो भी इसमें इंक्लूड है, और ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है इसमें इंक्लूड एयरलाइन टिकट भी है। ठीक हो गया जनाब, तो आपने एक बार जरूर अल हबीब ट्रैवल को कॉल करना है 905-554-7786, 905-554-7786 इनका नंबर है और इनकी वेबसाइट है alhabib.ca, alhabib.ca इनकी वेबसाइट है, जो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके तमाम ही पैकेजेस देख सकते हैं। चलिए जनाब, 5:18 और 55 सेकंड हमारी घड़ियों में हो गए, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको फौरन स्टूडियो नंबर 2 में ले जाते हैं जहां आरफा मुजफ्फर साहिबा और साबिर शाकिर साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है। तो आइए समाज करते हैं, हमारा नंबर 4166201778। आप ये इंटरव्यू इस वक्त रेडियो पर भी सुन रहे हैं, इसको टीवी पर देख सकते हैं, इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com वहां पर भी ये लाइव इंटरव्यू इस वक्त वहां देख सकते हैं। आइए जनाब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह अपने घर में काम काज पे लगी हुई थी, तो एक कॉल आई, दूसरी कॉल आई, तीसरी कॉल आई, फिर मेरी एक बड़ी बहन जो मेरी माँ की तरह से है, तनकनी मेरी की है, तो साबिर शाकिर साहब ने एक बड़ी लेके आए है, वो उन्होंने कोल सही इन्फॉर्मेशन है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनाब साबिर शाकिर साहब का, मैंने ऑफिस को कॉल किया, सर उन्होंने हमें टाइम दे दिया, उनका बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करने के बाद हर चीज को गौर से देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आई थॉट के इस वक्त के हमारे जो रेडियो के लिसनर्स हैं हम उनके लिए भी वो मालूमात फराहम करें। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में आज की जो डेवलपमेंट है आप लोगों की नजर से गुजरी होगी, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक अकवामे मुत्तहिदा का इजलास अभी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की और इमीडिएटली अपना जवाब का इस्तेमाल हक इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने उस बात का जो जवाब दिया कोट अन कोट में, दैट्स अ वेरी बैड लाइन, मैं क्या आपके साथ शेयर करूं और क्या ना शेयर करूं। और आई विश कि आई कैन हैव दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर उस वक्त आ रही होती कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, तो उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उनकी फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर उन्होंने अपना राइट यूज किया आंसर देने का, और इस्तेमाल करते हुए कहा कि एक ऐसा मुल्क जहां फौज निजाम चला रही है, जिसकी तारीख इंतखाबी धांधली से भरी पड़ी है, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को सिखाएगी कि इंतखाबात में शिफाफियत क्या होती है। यस, इंडिया भी अगर अपने आप को कहता है कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, इट्स नॉट फैक्ट, इट्स नॉट फैक्ट, बट ऑफकोर्स पाकिस्तान का ये जो भी इलेक्शन जो फॉर्म 45-47 का जो रगड़ा लगा है हमें, उसने हमें बहुत एम्बेरस किया अराउंड द वर्ल्ड, एंड आई विश के जो साहिब इक्तदार हैं वो उस बात का एहसास करें। एनीवेज, बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स, मैं जनाब साबिर शाकिर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और खुश आमदीद कहती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया जी
आपका था शाबत मेरी, आपको मैं बता नहीं सकती। आई वॉज रनिंग लाइक अ चिकन विद अ हेड कट ऑफ इन द मॉर्निंग आवर्स एज अ मदर, बट एक कॉल आ, दूजी आ, तीजी आ, चौथी आ, फिर मेरी बड़ी बहन की भी कॉल आ गई। सर आज पाकिस्तान में सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये 53 जो अमेंडमेंट्स आई थी, पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनको भी नहीं मालूम था, नून को भी नहीं मालूम था, और रात के 12 बजे तक किसी के पास भी एक्चुअल स्क्रिप्ट ही नहीं था, तो कहां से ये तरामीम आई थी?
ये रावलपिंडी में तैयार हुई थी, और रावलपिंडी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पे ये सब कुछ तैयार हुआ, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और बहुत ही राजदारी में ये सब कुछ हुआ। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब, और यहां तक के जिस मिनिस्ट्री ने इसको सबमिट करना था, टेबल करना था, लॉ मिनिस्ट्री, उसके पास भी नहीं थी। और जब बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई तो आजम नजीर ताड़ साहब ने फिर कहा कि जनाब मुबारक हो कि ये मिल चुकी हैं, तो उसके बाद सब पता हुआ। कि ये सब कहां से तैयार हुई थी, और ये बहुत ही राजदारी में तैयार हुई है, इसलिए इस बारे में कोई अब शक नहीं है कि ये रावलपिंडी प्रिंटिंग प्रेस में ही सब कुछ हो रहा था।
बहुत शुक्रिया सर। मुझे ना बड़ी हैरत होती है कभी कभी, बीग मुसलमान हम ये समझते हैं कि जी मेरा रिलीजन सबसे अच्छा, और आई ऑलवेज हैव डाउट्स इन माय माइंड कि अच्छा वो आदमी बहरिया है तो उसको कुदरत नहीं नजर आती कि खुदा कोई 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 तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो बाकी रिलीजन्स के लोग हैं ट्रिनिटी की जब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की तब भी सवाल, तो ये मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं क्या हो गया है कि वो खुद मुवाजना और मुकाबला क्यों नहीं सही कर रहे, क्या उनके दिमाग माऊफ हैं। आज सर इन्हीं तरामीम को अगर मैं देखती हूँ, इसमें चंद एक तरामीम ज़ाहिर है हमारे पास वो 53 तरामीम का जो समरी है वो मेरे पास मौजूद है इस वक्त, मगर आज आर्टिकल 63 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी की अपील में समाप्त करने वाले जो बेंच है उसका मेंबर बनने से इनकार कर दिया है, और चीफ जस्टिस ने बड़ा अजीब सा बयान दिया उस पर, उन्होंने कोई क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे?
ये मामला सारा खेल जो चल रहा है ना जी, ये है एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक्सटेंशन तीन एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन है काजी साहब की, और काजी साहब के बाद एक्सटेंशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसके बाद फिर लास्ट एंड फाइनल एक्सटेंशन है जनरल साहब की, आसिम मुनीर साहब की। ये सारा जितना भी इस वक्त आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं, ये उसी एक्सटेंशन के इर्द गिर्द सारा खेल चल रहा है, और इसमें किसी को अब शक नहीं है। काजी साहब अगर होंगे तो वो कवर देंगे, वो आपको मालूम है लड़ाई शड़ाई हो रही हो तो फिर एक बहुत ही खास आदमी होता है, एक हमला हो रहा हो तो दूसरा पीछे कवर देने के लिए होता है, और तो ये कवर देने के लिए हैं, कवर करने के लिए हैं सब कुछ। अब तक जैसे काजी साहब ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एक पूरे का पूरा इलेक्शन 2024 को जिस तरीके से हुआ, और उसके बाद फिर इलेक्शन चोरी, फिर फॉर्म 45, 47, बल्ले का निशान, ये सारा, तो उसमें जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं काजी साहब ने, इससे अच्छा चीफ जस्टिस कोई और हो नहीं सकता। तो लिहाजा काजी साहब नागुजीर हो गए हैं इस जाली निजाम के तहफ्फुज के लिए। तो सबसे पहले काजी साहब को कहा गया, क्योंकि उसको बहुत पहले कह दिया गया था कि आप कंटिन्यू करेंगे, और इसीलिए काजी साहब हर गलत फैसला वो करते रहे, आईन को नहीं देखा, कानून की नहीं देखा, जमहूरी रवायात को नहीं देखा, और लेकिन जब आया फुल कोर्ट हुई तो फुल कोर्ट डिसीजन जब आया तो वो सारे का सारा हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो गई, उस पर काजी साहब भी फंस गए, और काजी साहब के साथ जो इनके सहूलतकार थे या इनके पीछे थे वो भी फंस गए सारे के सारे, और ये सारा सिस्टम जो 8 फरवरी 2024 और उसके बाद फिर 547 के नतीजे में मारे वजूद में आया था वो एक मुसीबत बन गया इनके लिए। अब उसमें एक बात आपको बताऊं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये आपको मालूम है कि 2 दिन पहले इन्होंने रिटायर होना था। अब इनकी जो सर्विसेज है ना, वो नोटिफिकेशन में भी आप देखें तो उसमें कि इनकी सर्विसेज को रिटेन किया गया 2 दिन के लिए रिटेन करके फिर इनको प्रमोट करके और फिर वो सारा काम, उसमें कुछ लकूनाज हैं, और जब तक वो पार्लियामेंट उनको इंडेमनिटी नहीं देगी, उनको लीगलाइज नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मुसीबत बनी रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, अब उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए इन्होंने सोचा कि अमेंडमेंट जरूरी है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक मामला नहीं होगा। अब नंबर इनके पास पूरे नहीं है, वो जो 63A की तरफ मैं आ रहा हूं, नंबर इनके पास पूरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 63A की तशरीह कर चुकी है, और वो बहुत अच्छा हिस्टोरिकल डिसीजन है 75-77 सालों में कि लोटाक्रेसी हॉर्स ट्रेडिंग वो तकरीबन बंद हो गई है, और उसमें वोट खरीद ही नहीं सकते, अगर आप पहले तो खरीद ले लेते, अब है कि वोट का आप बेशक ले लें, अगर कोई लोटा वोट करता भी है तो वो वोट शुमार नहीं होगा। अब यहां पे आके ये सारे का सारा सिस्टम जब स्टक हो गया, और ये 2/3 अक्सरियत देने का मकसद भी यही था, पहले दिन से इनके जहन में मौजूद थी ये बात, कि हम क्यों ये दे रहे हैं, और ये सारी जो पीटीआई की और सुन्नी कहा काउंसिल की मखसूस नशस्तें भी इनके हवाले कर दी गई, वो भी उसी गेम का हिस्सा था, स्क्रिप्टेड था सारा कुछ। लेकिन वो जब सीटें हाथ से निकली तो दो तिहाई अक्सरियत चली गई, अब दो तिहाई अक्सरियत चली गई है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। उसके लिए इनको कुछ हॉर्स ट्रेडर्स तो मौजूद हैं लेकिन घोड़े चाहिए, और वो वोट शुमार करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि 63A को दोबारा से रिव्यू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। काली साहब उसके लिए तैयार हैं, और फिर एक दो एडहॉक जज लेके आए, उनमें से एक एडहॉक जज को फिर अपने साथ मिलाया, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा था क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी साहब ने वो जजिस कमेटी में थे। फिर इन्होंने एक सरदारती फरमान जारी करवाया और उसके तहत इन्होंने इख्तियार खुद लिया। ये 63, ये सारा 63A के इर्द गिर्द घूम रही है सारी चीज। और फिर जब ये इख्तियार मिल गया तो उन्होंने फौरन कमेटी बनाई, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उससे निकल गए, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, जस्टिस अमीन को जो कि जूनियर जज है उनको फिर साथ मिलाया, और उनको साथ मिला के उन्होंने बेंच बना के, तो आज ये काम इन्होंने करना था कि ठीक है जी, लोटा वोट डालेगा तो वोट शुमार होगा और हॉर्स ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी, तो आप अपने नंबर्स पूरे कर लें, वोट उठा लें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकारी हो गए, अब इनको नंबर्स चाहिए 63A के की आड़ में, तो वो ये सारा काम करना चाह रहे हैं। आज जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसमें से आज उन्होंने खत लिखा, और अभी मैं ऑर्डर पढ़ रहा था काजी साहब का, आज का जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें उन्होंने फिर एक गलत बयानी से काम लिया, मिसकंडक्ट, और वो ये कि उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को प्रेजेंट शो कर दिया कमरा अदालत में, और नीचे उनका नाम भी है उसमें दस्तखतों वाली फहरिस्त में डाल दिया। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा हुआ है और वो आज कमरा अदालत में नहीं आए। आज असूलन तो ये बेंच होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाकी चार जजिस भी वो आए, काजी साहब अपनी तीन ऑनरेबल जजिस को लेके, और वहां पे उन्होंने गपशप लगाई और उसके बाद वो चले गए। अब ये 11:30 बजे कल दोबारा इसको टेकअप करना है, और बुनियादी मकसद है कि 2/3 मेजोरिटी के लिए इनको वोट प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि 2/3 अक्सरियत होगी तो ये अमेंडमेंट हो सकेगी, और फिर अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे राज पिन्हा हैं।
शुक्रिया सर, उन्होंने अपने जो नोट में लिखा है कि मेरी इस माजरत को मुकदमा सुनने से माजरत न समझा जाए और मेरे इस नोट को नजरसानी अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, यानी ऑल्डो ही वॉज एब्सेंट मगर उन्होंने एक तरह का अपना इजहार कर दिया है कि ही इज नॉट एग्रीड विद। मेरे सर, आपने बड़े दिनों से एक चीज थी कि ये ट्राइका है, यानी आप सोचिएगा आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है इसके दरमियान टेंशन्स चलती चली आ रही हैं, मगर मुझे अब लग रहा है जैसे जो आपका पॉलिटिशियन है उसने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, वो आटे में नमक के साथ आटे के साथ घुन पिस रहा है, क्योंकि बिलावल साहब ने बिल्कुल यही वर्डिंग कही थी कि अगर कोई मेंबर किसी पार्टी का है तो वो वोट अपनी मर्जी से डाल सकता है। एग्जैक्टली यही कहना चाहा कि यू नो कैन बी अ लोटा एज पर रिक्वायरमेंट।
ऐसा ही है, वो देखे ना, सिंध में मंडी लगी, सिंध हाउस में मंडी लगी थी जब तहरीक आदम एतमाद हुई थी इमरान खान के खिलाफ, तो आखिरी मंडी उसमें लगी थी, कुछ राजा रियाज वगैरह आपको याद होगा, उस तरह के एक पार्डर ब्लॉक बनाया था, पार्डर ब्लॉक बना के इन्होंने वोट वो कोशिश की थी नंबर पूरे करने की, लेकिन उससे पहले पंजाब हाउस में ये हो चुका था नंबर, जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। तो बुनियादी बात यही है कि ये काजी साहब, अफसोस की बात यह है कि काजी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, वो बाकायदा तौर पे अलाउ कर रहे हैं वोटों की फ्री ऑफ टोक्ट, हॉर्स ट्रेडिंग, लोटा क्रेसी, और आप वोट आप खरीदें और खरीद के आप आइन बदल लें। अब उसमें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस वक्त आपको 10 वोट चाहिए, तो अगर आपके पास 5 अरब रुपया हैं तो आप आइन अमेंड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक आइन बदल दें, तरामी ले आए, 10 आदमी हैं वो आपको 50 करोड़ रुपए का फी आदमी फी बंदा मिल जाएगा वोट, वो आप करें, और उसके बाद 5 अरब रुपए में आप अपनी मर्जी की तरामीम कर सकते हैं और आइन को तोड़ सकते हैं। तो काजी साहब जो हैं वो इस को अलाउ कर रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं।
काजी साहब की जो रिटायरमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड ऑन 25th of October, नॉर्मली एक महीना पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि हु इज द न्यू चीफ जस्टिस। और मतलब काजी साहब तो बड़ी दफा अपनी तरफ ऐलान कर चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो एक तो मेरा ये सवाल है और इसी से मुतल्लिका सवाल है कि ये जो वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि काजी साहब, बिकॉज वफाकी आईनी अदालत जो है आप इमेजिन कीजिएगा, वो कहते हैं कि उसको कोई चैलेंज ही नहीं, वफाकी आईनी अदालत को भेजा जाएगा और उसके फैसले को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकेगा, तो इज ही एक्सपेक्टिंग टू गेट एक्सटेंशन और ये तरामीम आ जाए और वो ये सोचते होंगे शायद वफाकी आईनी अदालत में उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इज दैट सो?
डेफिनेटली ये उन्हीं को ही लॉलीपॉप दिया हुआ है ये वाला, और उसमें वफाकी आईनी अदालत का मतलब है कि नई अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम होगी और हाई कोर्ट उसके अंडर होंगी और उस कोई चीज चैलेंज नहीं हो सकती, नंबर वन। नंबर टू ये कि इस सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट का नाम, इसका पहले इस वक्त जो डेजिग्नेशन है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय उनका नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये कर दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिए जाएंगे। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बहुत अच्छा नाम है ये, दिल लुभा लेने वाला, कि वफाकी आईनी अदालत, वो असल में एक पैरेलल एक सुप्रीम से भी सुप्रीम कोर्ट बनाई जा रही है, सुप्रीम जुडिशरी बनाई जा रही है, जिसके अंडर पांचों हाई कोर्ट्स होंगी और जिसके पास सुप्रीम कोर्ट भी होगी और वो हाई कोर्ट्स के जजेस को ट्रांसफर कर सकेंगे और सारी जजेस की अपॉइंटमेंट उसके पास चली जाएंगी और चीफ जस्टिस जो फेडरल कोर्ट का होगा उसको अपॉइंट करेंगे शहबाज शरीफ साहब अपॉइंट करेंगे, फिर अगले जो पांच चार जजेस उसमें डालने हैं वो भी उसमें होंगे, फिर उनकी एज 68 रखी जा रही है ताकि जो
एक्सटेंशन आ
गई, जी वो एक्सटेंशन हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 65 में बंदा रिटायर होता है तो उधर जाके 68 होगा, 3 साल की वो एक्सटेंशन आ जाएगी और फिर ये एक मुस्तकिल ब्राइब के तौर पे ये केक रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि जनाब आप हमारे साथ ताबेदारी करते रहें और जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे आपको हम 3 साल के लिए फेडरल कोर्ट में भेज देंगे। तो ये एक पूरे का पूरा प्लान है जो कि बनाया गया था।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं सर यहाँ पे मेरा एक सवाल आ रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आपके वो तो बदल गए, DGSI तो बदल गए, सुना है कि इनके वालिद साहब भी जनरल हैं और इनके वालिद साहब वो शख्स हैं जिन्होंने एक जमाने में नवाज शरीफ साहब को कहा था कि तू खेड़ी लाना है कि मैं जुती लावा। सुना है आर्मी में ये बड़ा लफ्ज जो था मशहूर भी हुआ था, तो व्हाट डू यू थिंक, और कहते हैं कि इनका रिकॉर्ड जो प्रीवियस है वो बड़ा ऑनेस्ट रिकॉर्ड है, व्हाट डू यू थिंक? और बाजुकात अपना हाथ का लगाया हुआ पौधा जो है वो गले का हार भी बन जाया करता होता है, जैसे भुट्टो साहब का बना, जैसे नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को अपॉइंट किया था, तो आसिम मुनीर साहब के गले का फंदा तो नहीं बन जाएंगे?
देखिए नदीम अंजुम साहब जो थे वो चॉइस से जनरल बाजवा के और उन्होंने अपॉइंट किया था, फिर आसिम मुनीर साहब के जमाने में उनको 1 साल की एक्सटेंशन हो गई, तो ये पहली अपॉइंटमेंट है आसिम मुनीर साहब की, बड़ी अपॉइंटमेंट जो कि उन्होंने खुद की है और अपनी मर्जी से लेके आए हैं, और ये पूरी की पूरी फैमिली जन आसिम मलिक साहब की जो पूरी फैमिली है वो सारे के सारे हैं जी फौजी खानदान है और तगड़ा खानदान है, फौजी खानदान भी तगड़ा, इनके वालिद साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे और फिर इनके एक और हैं गालिबन चचा हैं या बहुत ही करीबी वो हैं जनरल मुजम्मल, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, तो इस तरीके से ये खुद अब लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे पहुंची हैं। जनरल आसिम को प्रमोट किया था जनरल बाजवा ने, आखिरी जो खेप उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले उसमें जनरल आसिम भी शामिल थे, तो ये उस खेप से अब इन्होंने क्या करना है, इनकी पॉलिसी क्या होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जन फैज जो है इस वक्त वो उनको किया हुआ है गिरफ्तार और वो फौज की तहवील में है और उन पे इल्जाम को टॉप सिटी से लिया था, टॉप सिटी से होते हुए फिर 9 मई से इमरान खान के साथ और इमरान खान के साथ फिर अब जो आखिरी जो एक स्क्रिप्ट आया है उसमें मैं देख रहा था 2-4 दिनों से, अब उनको सारे का सारा ये जो इलेक्शन जो चोरी हुआ और ये सारा जो खबरें बाहर आई, कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं जी वो भी जनरल फैज के कहने पे की थी। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये इसको अच्छा नहीं समझा जा रहा जनरल फैज की गिरफ्तारी को, क्योंकि जनरल फैज ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी रिहाई से अपनी गिरफ्तारी से पहले भी बता चुके थे कि DGISI खुद कुछ भी नहीं होता, वो आर्मी चीफ जो ऑर्डर दे रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक्ट कर रहा होता है और DGISI जो है वो अभी पिछले दिनों DGISPR ने कहा कि जी वो वजीर आजम के अंडर होता है, हालांकि वजीर आजम का वो सिर्फ एक नाम है सिंबॉलिकली, क्योंकि इस वक्त भी जनरल आसिम की अनाउंसमेंट जो है वो पिंडी से हुई है, DGISPR ने ही खबर रिलीज की कि उनको जी अपॉइंट कर दिया गया और 30 सितंबर की तारीख भी दे दी। अभी तक उनका नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, यकीनन हो चुका होगा लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कहीं फिजाओं में थे या लैंड करने वाले थे जब ये अनाउंसमेंट हुई है, तो इसलिए अब जब आसिम मलिक साहब जो है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं जो पिछले इतने अरसे से हो रहा है और ये सारा मलबा फिर DGISI पे डाल दिया जाता है, जैसे जनरल बाजवा के जमाने का सारा मलबा जो है वो जनरल फैज पे डाला जा रहा है, तो इसी तरीके से अब जहां आसिम मलिक साहब को खुद देखना होगा कि वो अपने इदारे की एक खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस कैसे बरकरार रखते हैं।
सर आपकी ये सारी बातचीत से वो कहते हैं ना हाथी लाख का जिंदा लाख का मरा सवा लाख का, जनाब बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट पे भी उनके फादर इन लॉ जनरल इजाज साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल इजाज ने बड़ा रोल प्ले किया था, लेट्स सी कि ये क्या होता है। मेरा सर एक अजीब सा सवाल आपसे है कि फैसल दो पोजीशंस खास तौर पे एक मोहसिन नकवी की और फैसल बावड़ा की, और किसी ने यहां फिर मुझे एक कहावत याद आई कि ना जरा मादा नहीं हो किसी का भी नहीं, फैसल बावड़ा वाज वेरी क्लोज टू जनाब इमरान खान साहब और आज वो घर का बेटी लंका ढाई वाला काम कर रहे हैं, कहते हैं सबसे करीबी दोस्त जो है सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। मगर फैसल बावड़ा आज जिनके दोस्त बने हुए कल उनके भी दुश्मन हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। मेरा सर उन्होंने वो बड़े खफा थे जब ये तरामीम के ऊपर साइन नहीं करा सके, उन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरी की पूरी हमवार मैदान बना करके दिया था और पॉलिटिशियंस से एक चीज जो है वो नहीं हो सकी, तो वो क्या इशारा देती है कि मोहसिन नकवी और वावड़ा साहब जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग एस्टेब्लिशमेंट एज सेनेटर्स एंड आपको लगता है कि ये भी इनके भी लंका ढाएंगे कल कलां को?
देखिये ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बराह रास्त आसिम मुनीर साहब के साथ लिंक हैं और उनकी अहलिया के अजीज हैं और उन्हीं के ही ये नॉमिनी हैं और वजारत दाखिला भी उन्हीं की वजह से मिली है। फिर मोहसिन नकवी साहब की कोई जमात नहीं है लेकिन वो सेनेटर हैं और उनको सेनेटर बनाया है पंजाब से मरियम साहिबा ने, वोट उनके हैं। बैसलवाड़ा कोई जमात नहीं है लेकिन उनको वोट दिया है MQM पीपल्स पार्टी ने सिंध से, तो लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिक्टेट करते हैं और ये अनऑफिशियली जो है वो स्पोक्स पर्सन है, माउथ पीस है और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कुछ है वो करते रहते हैं, उनको बिल्कुल अटॉर्नी उधर से मिली हुई है। लेकिन इसीलिए फिर जब किसी ने बुरा भला कहना हो वो कहते हैं माँ को नहीं बल्कि माँ के बच्चे को बुरा कहें तो वो खुद ब खुद ही पहुंच जाती है, तो इसलिए फैसल वाडा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। और ये जो कहते हैं कि बना के दी थी, तैयार करके दी थी, वो मेरा ख्याल है इनके मिसकैलकुलेशन जो थ्रू आउट इनसे हो रहा है, इन्होंने मिसकैलकुलेट किया और इसलिए मिसकैलकुलेट किया कि वो बिल्कुल ठीक है, तैयारियां बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई थी और इनका ख्याल था कि जितना जबर हम कर चुके हैं उस जबर के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो चूचरा करे और वो अमेंडमेंट जो है वो इग्नोर ना हो सके। अगेन इनसे मिसकैलकुलेशन हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब और फिर पीटीआई तो है ही है, कुछ और भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब उन्होंने देखा कि इसमें तो आर्टिकल 8 भी जा रहा है, आर्टिकल 9 भी जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक भी जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल आ रहा है और बगैर किसी इजाजत के आ रहा है, और फिर उसमें एक और अमेंडमेंट थी जो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ना कि हमने अमेंडमेंट देखी, पैकेज देखा, तो उसमें तो हर तरफ हमें फौजी फौज नजर आ रही थी और यूं ही समझे कि वो फिर एक मार्शल्ला था जिसको उस अमेंडमेंट के कवर में नाफिज किया जा रहा था। तो उसमें एक और अमेंडमेंट भी थी, वो थी आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 जो है वो 4 पे खत्म हो जाता है, तो उसमें एक सब क्लास 5 ऐड की जा रही थी जिसके बाद इन सब का माथा ठिनका।
बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मोहतरमा मरियम साहिबा, एक न्यूज मेरे तक आई थी और एनी शाहिदीन ने बताया था, दे कुड नॉट हियर कि वो क्या बात कर रहे थे, मगर कहते हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो सोफे पर बैठी हुई थी, तारड़ साहब खड़े हुए थे और जो हमारे नदीम मंजुम साहब तब थे वो भी खड़े हुए थे और उनके जो जेस्टर्स थे बड़े बता रहे थे कि समथिंग वेरी सीरियस, और वो सोफे पे बैठी हुई जमीन को घूरती चली जा रही थी। तो वो डू यू थिंक व्हाट दीज गवर्नमेंट्स आर वर्किंग, अगर उनके पास पावर्स नहीं तो क्या वो सिर्फ अपना कट्स लेने के लिए ही काम करते जा रहे हैं, अब तो IMF के फंड्स भी मिल गए हैं, क्या फरमाएंगे इसके बारे में, यानी जो इस वक्त जो पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं अगर उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, दे कैन नॉट डू समथिंग कंक्रीट फॉर द कंट्री एंड पीछे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही है, तो क्या कहेंगे। और इंडिया ने यही अक्वामे मुत्तहिदा में उनकी जनाब मियां साहब की तकरीर के जवाब में कह भी दिया, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे।
इसमें तो कोई शुबा नहीं कि इस वक्त हमारे यहाँ जो डिफेक्टो रूलर्स जो हैं वो तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है, डिजोरे तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, वो एक पपेट्स तो कह सकते हैं उनको, तमाम अथॉरिटीज रावलपिंडी के पास हैं और रावलपिंडी ही इस वक्त रूल कर रहा है। और फिर यह है कि खुद शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक अदना सा खादिम हूं, अदना सा गुलाम हूं, बाकी सब कुछ सिपहसालार कर रहे हैं, IMF के साथ मामला भी उन्होंने तय किए हैं, और अगर इस नतीजे में जो मिनी बजट आना है 1000 अरब रुपए का या खरब का, क्योंकि इतने फिगर्स हैं कि सोच ही सकता है बंदा, वो भी जो आएगा उसके जिम्मेदार भी फिर यही होंगे जो महंगाई का तूफान आना है। तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक अदना सा गुलाम और अदना सा खादिम हूं, सब जो कुछ है वो सिपा सलार है। तो अगर जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहेगा तो फिर राजनाथ सिंह को भी ये बात कहने का मौका मिलेगा और उनके वजीर दफा भी बिल्कुल बात करेंगे। मैंने अभी ये इस पर ट्वीट भी किया है कि कहां कुलभूषण की गिरफ्तारी और कहां अभिनंदन, और अब हमें राजनाथ सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे बात करनी, अगर आप हमें कह देते तो हम आपको पैसे दे देते। तो ये डिक्लाइन है हमारी एक मुकम्मल तौर पर।
राजनाथ सिंह ने तो जो कहा सुखा, उनकी जो फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका साहब है, हम आपको ये न्यूज दिखा भी रहे हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत व्हाट वुड आई से कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां निजाम फौज चला रही है, तारीख इंतखाबी धांधली से भरी हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को सिखाएगा कि इंतखाबात में शिफाफियत क्या होती है। क्या कंक्लूड करेंगे कि बड़े मियां साहब को गवारा है जो छोटे मियां साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और व्हाट इज दी एंड एंड कितना अरसा ये PDM-2 चलेगी। बस मैं यही इख्तिताम चाहूंगी कि जरदारी साहब अपना 4 साल का टेन्योर पूरा करेंगे और बाकी सब कुछ रहेगा कि वो भी घुल जाएगा।
देखिए ये डिपेंड करता है यही जो तरामीमी पैकेज है, और ये तरमीमी पैकेज जो है जो जिसके मेरे अपने ख्याल है कि 99% है कि ये नहीं हो सकेगा, और अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर कोई आइन नहीं, कानून नहीं, जमहूरियत नहीं, बल्कि एक मार्शल्ला को आप कवर दे देंगे और मार्शल्ला निज़ाम जो है वो आ जाएगा और हमें हम सब जो है वो पाकिस्तान बहुत कई दिहाइयां पीछे चला जाएगा और ये होगा। अब ये पीडीएम शहबाज शरीफ साहब का पूछा, शहबाज शरीफ साहब कल्टीवेट हो गए थे पहले दिन से ही, जनरल बाजवा साहब के जमाने में जब वो एक कार की पिछली बूट में जो गए थे उस वक्त वो कल्टीवेट हो गए थे, मियां साहब माने या ना माने, तो वो अपने उसी काम पे चल रहे हैं। बस इनको फायदा ये हुआ फौरी तौर पे कि इनके मुकदमात खत्म हो गए और नवाज शरीफ साहब के भी मुकदमात
अपनी मर्जी की और ऑलमोस्ट अपनी मर्जी की हो गई। वो एक सेट में मैं यही कंक्लूड आपसे करवाना चाहूंगी, जनाब जियाउल हक साहब के दौर में एक स्टेटमेंट और बुक्स में भी इसका जिक्र है कि एक कब्र मुर्दे दो, तो एक मरे तो दूसरा बचेगा, दूसरा बचे तो पहला मरेगा, तो कोई ऐसे सिनेरियो ही अब भी चल रहा है कि इमरान खान अगर रिहा होते हैं तो मतलब क्या, बस कंक्लूड कर दें इसी के ऊपर।
ऐसा ही है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले कंक्लूड करते हुए कि पिछले 2.5 साल और खासतौर पर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क में, और फिर एक बात जो सबसे खतरनाक है, इलेक्शन में धांधली तो होती रहती है, 15 सीटें 20 सीटें 25 सीटें आगे पीछे हो जाती हैं। इस दफा पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो तब्दील किया गया, वो चोरी किया गया, नतीजे सारे के सारे तब्दील कर दिए गए, फॉर्म 47 तकसीम किए गए हैं। तो ये आइन एक दफा नहीं कई दफा टूटा है और इसके बारे में गवाहियां बहुत हैं और वो गवाहियां चीख चीख कर कह रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर इमरान खान साहब आते हैं तो अवामी ताकत उनके साथ है और जुडिशरी उनके साथ खड़ी होगी। जब ये दोनों चीजें साथ खड़ी हैं, पब्लिक सपोर्ट भी है, अवामी ताकत भी है, तो यकीनन एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और वो इसी रिजीम की होगी और किसी और की नहीं होनी। तो जियाउल हक से भी ज्यादा संजीदा मामला है।
शुक्रिया सर, आपने आपका तजुर्बा मुझसे कई गुना ज्यादा है। आपने कहा ऑफकोर्स उनके साथ अवामी ताकत जरूर होगी, आप जुडिशरी सो कह सकती हूं मैं, मगर सर उनके पिछले भी 3 साल के दौरानिए में आप याद करिएगा, ब्यूरोक्रेसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो सारे के सारे बंदे इनके हैं ये। और मेरे पास एक और न्यूज जो पहुंची, ये थर्सडे को न्यूज पहुंची थी कि असद उमर साहब ने तो ये कहा जब उनको प्रेशराइज किया गया कि वो बदलें अपना कोई बयान दें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि एक वीडियो भी दिखाई गई और ये वीडियो जिसमें इमरान खान शायद उनसे कोई बात कर रहे हैं अडियाला जेल में, हर चीज की वीडियो बनती है, तो असद उमर ने जवाब दिया कि आप मुझे मार दें मगर मैं इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप मुझे गोली मार दें। मगर फरा गोगी साहिबा, द डे वेन इमरान खान की पावर या इनकी रजीम चेंज आता है, फरा गोगी उसी नाइट शी लेफ्ट फॉर दुबई, कहा जाता है कि वो वादा मुआफ गवाह भी बन रही हैं। और अभी जुल्फी बुखारी साहब ने 9.3 बिलियन की कोई जमीन कोई होटल लिया है, मेरे पास तस्वीरें आ जाएंगी आजकल में इंग्लैंड में। बस ये भी एक चीज रह गई थी जो मैंने कहा मैं आपसे बात करी,
उसमें क्या आता है वो तो जब आएगा तो मेरा ख्याल है पता चलेगा। तो फरा गोगी हो या जो भी हो, अगर उन्होंने गलत काम किया तो उनको बिल्कुल वादा माफ नहीं, बल्कि उनको तो होना चाहिए, मेन अक्यूज होना चाहिए। वादा माफ क्यों,
माफ बनने लगी है ना, तो वादा माफ तभी है ना कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं।
मेरा अपना ख्याल है कि शायद मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सब कुछ होता तो अब तक हो चुका होता ये, वरना फिर ये आपका अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना, आज फिर बगावत के मुकदमात और इस तरह से, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आपके पास कोई सॉलिड केस ना हो।
अगर किसी चीज का भी केस उनके पास नहीं, दे कुडंट प्रूव एनीथिंग, 9 मई तक को आज तक प्रूव नहीं कर सकते
जी। हाँ, आज भी 19 लोग बरी हुए हैं आज 9 मई के, और 19 लोग आज बरी हुए हैं। और आपने जो बात की ना जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की, तो पिछले दिनों एक खोसा साहब का डॉन में आर्टिकल आया और वो भी सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात मैं कर रहा हूं, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس لیفٹنٹ جنرل ہیں، چیئرمین نادرا لیفٹنٹ جنرل ہیں، پی ٹی اے چیئرمین میجر جنرل ہیں، چیئرمین نیب لیفٹنٹ جنرل ہیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیفٹنٹ جنرل ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے عہدے ہیں. تو سول بیوروکریسی بھی تو سوچ رہی ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ عہدے تو یہ سیٹیں تو ان کی ہیں.
نوجوان اس بات کو بہت برا لے رہا ہے کہ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اپنے پلاٹس بھی لے لیے، آپ نے ہر طرح کی مراعات لے لی اور آج آپ ہمارا حق چھین رہے ہیں کہ جن اداروں کے اوپر ہم نے جابز ملنی ہیں. تو ظاہر ہے وہ بےچارے پڑھ لکھ کے بےکار بیٹھے ہوئے.
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سی ایس ایس کرتا ہے یا پی سی ایس پولیس گریڈ 17 سے اپنی سروس جاب سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں 22 تک جاؤں، میں سیکٹری بنوں، میں اداروں کو ہیڈ کروں. تو ان اداروں کو اب ہیڈ سیولین تو نہیں کر رہے، وہ تو ان سے تو سیٹیں چھین لی گئیں اور ان کی جگہ پہ جو ملٹری رولرز ہیں وہ ان کو اپائنٹمنٹ کی جا رہی ہے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایڈوانس بکنگ جاری ہے. تو اس لیے سول بیوروکریسی بھی سوچ رہی ہوگی اسی طرح کی باتیں اور یقیناً باقی لوگ بھی سوچیں گے. اور یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اب اس کے چار ارکان ہیں، وہ ایکسٹینشن سارے کا سارا ایکسٹینشن دے دیا جائے ان کو، پھر آپ چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن دے دیں تو پھر نیچے والے سارے، یہ سارا ایک پورے کا پورا ایک گرینڈ
ہوائی گڑبڑ میں آوے گا، ہوائی گڑبڑ میں ہے. تو مطلب یہ بڑی پیاری سٹیٹمنٹ ہے، یعنی تعیناتیاں، دوبارہ تعیناتیاں، ایکسٹینشن اور کس کو ملازمت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، مگر نوجوان بہت اپسیٹ ہے. جناب صابر شاکر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ فار بینگ ود اس. یعنی وہ بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو اور یس آپ کے اپنے وی لاگز ہیں جس میں آپ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، مگر آپ کے جو سبسکرائبر ہیں پھر وہ ہمیں کہتے ہیں ریڈیو کے اوپر بھی آپ ان کی بات چیت کرائیں، سب کے ساتھ آپ بات چیت کرائیں ان کے ساتھ. میں نے کہا اچھا میں کرا دیتی ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری کال ایکسیپٹ کی اینڈ انشاءاللہ لک فارورڈ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے، مگر ایک بات میں ضرور کہتی ہوں آپ کو، قرآن کا لفظ ہے جیسی قوم ہے ویسے لیڈر. تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا ضرور ہوگا، ہمیں کتنی گڑبڑ ہے. اب اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.
وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس.
پراپرٹیز ریزیڈینشل اور کمرشل، بائنگ اور سیلنگ،
انویسٹمنٹ پراپرٹیز یا پھر کنڈومینیمز ان دی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو،
وی ول ارینج یور مورگیج،
آلسو ا ہاؤس وارمنگ گفٹ.
سروس از آر پرائیورٹی،
کسٹمر سروس از آر پرائڈ. پلیز ایکسپیرینس دی ڈفرنس. آپ گھر خریدنا یا گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، گھر کی ایویلویشن کے لیے ایک دفعہ کال کیجیے عارفہ مظفر 6478986245 8986245.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
रोजाना आवाजाही नु घटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार एही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और